छठवां, कबीर और कबीर। सदी के इस आखिरी दौर में देश विदेश, उत्तर भारत और खास तौर से हिंदी क्षेत्र में संत कबीर की 600वीं जयंती की धूमधाम है। कबीर की इस जयंती को बड़े बड़े उत्सव, समारोहों, यात्राओं, सांगीतिक अनुष्ठानों, मेलों, विद्वानों की विचार गोष्ठियों तथा और भी कई रूपों में मनाया जा रहा है। इन आयोजनों में कबीर मठ, कबीर प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी उपक्रमों के साथ साथ सरकारी तंत्र और सरकार के स्तर पर होने वाली पहल का भी योगदान है। जो सरकारी तंत्र तथा जो व्यवस्था अभी तक कबीर को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखाई पड़ती थी, अचानक कबीर संबंधी इन आयोजनों को लेकर बेहद उत्साहित दिखाई पड़ रही है। कबीर पर उसका अनुराग यकायक बढ़ गया है। व्यवस्था की कबीर के प्रति जो सांप्रतिक उन्मुखता है, उनके अपने कारण हैं। उसका राजनीतिक कारण तो बहुत स्पष्ट है। कबीर को अपने दायरे में और उसके बाद अपने कब्जे में लेकर वह उस विराट तबके से अपने को जोड़ना चाहती है। कबीर जिसके अंग थे और जिसे उसने अभी तक अपने से अलग कर रखा था, आज उसे कबीर के समाज के समर्थन की बेहद जरूरत है। और कबीर पर उसका अचानक उमड़ आया यह अनुराग उसकी इसी आकांक्षा के तहत है। एक बार फिर कबीर उसके निशाने पर हैं। व्यवस्था ने अपने दांत कबीर पर गड़ा दिए हैं। उसके दांत कबीर के जिस्म पर कितने गहरे जाएंगे कहा नहीं जा सकता। उसकी हजारे बाहें कबीर को कितना समेट पाएंगी यह तो समय बताएगा। जरूरत इस मुद्दे पर सोचने की है, खास तौर से उन्हें जिसके लिए कबीर एक निर्गुण संत भर नहीं है, किसी मठ या प्रतिष्ठान से बंधे हुए, बल्कि कुछ और है, मसीद और देहुरा से आगे भी जिनकी अहमियत है। कबीर की यह जो हकीकत है वह उन्हें हमारे समय के लिए ही नहीं, आने वाले समयों के लिए भी जरूरत बनाती है। जरूरी यही है कि कबीर का यह कुछ बचा रहे उस विराट मनुष्यता की खातिर जो एक मानवीय जीवन जीने के सपने को सदियों से अपने आँखों में पाले नरक की स्थिति भोग रही है। पैराग्राफ चेंज। अपने जीवन भर जो कुछ कबीर ने कहा और सुनाया उसका फलक बड़ा है। उसमें कबीर का कहा सब कुछ है, जिसके चलते कई तरह के विचारों के दायरे में हर किसी के जरिए ग्रहण और विश्लेषित किए जाते रहे हैं। पृष्ठ संख्या 104। किसी को कबीर की भक्ति प्रिय है तो किसी को उनका योग, कोई उनके ज्ञान पर रिझा हुआ है तो कोई उनके रहस्यवाद पर, कोई उनकी दार्शनिक आस्थाओं को अपने पक्ष से विश्लेषित कर रहा है तो कोई अपने दायरे में उन्हें लेना चाहता है। इन तमाम बातों के साथ साथ कबीर के अपने जिए भोगे और देखे सुने को प्रतिफल बनाए सामने आने वाला उनका समाज दर्शन है, जो जरूर सबके अनुकूल नहीं पड़ता। उसे पंडित रामचंद्र शुक्ल ने तो पूरी तरह से नकार दिया था, किंतु जो विद्वान मसलन आचार्य द्विवेदी उसे उभार कर सामने लाए हैं, उनकी मनसा भी उसे बुनियादी तौर पर कबीर के दिगर पहलुओं में घुल मिलाकर इस तरह सामने लाना रहा है कि वह अपनी विशिष्टता ज्ञापित करने के बजाय उनके दूसरे पहलुओं के साथ गांठ जोड़ किए एक सामान्य धरातल पर ही रहे। इसी नाते आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मूलतः भक्त मानते हुए आगे के सगुण भक्तों से उनके अंतर्वर्ती संबंध स्थापित किए हैं। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति को उनकी बुनियाद पर एक और अभिन्न माना है। पैराग्राफ चेंज। समाज दर्शन के साथ यह जो कबीर में और भी बहुत सा है वह आपस में टकराता भी है और समग्रता कबीर के कहे गए ये अंतर विरोधों की पुष्टि भी करता है। इस सबको एक सूत्र में बांधने के जो भी प्रयास हुए हैं और हो रहे हैं वे न उसकी एकतानता को बनाए रखने में न सफल हुए हैं और न हो सकते हैं, कारण उनकी अंतर वस्तु एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यही बात हमें इस तथ्य का एहसास भी कराती है, जैसे कबीर में ही एक और कबीर भी है। कबीर के इस द्वित्व का संबंध वस्तुतः इसी अंतर विरोधी अंतर वस्तु से है, जिसमें एक ओर परंपरा से चले आते हुए स्वीकार है, दूसरी तरफ अस्वीकार। कबीर को समग्रता और प्राथमिक तौर से जानने के लिए उन्हें उनके दोनों पहलुओं के साथ जानने और समझने की जरूरत है। यह जानने की जरूरत है कि कितना कुछ परंपरा का उन्होंने सजग रूप से स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है, और कितना कुछ अनजाने संस्कारों के रूप में अनायास उनके साथ आ गया है। कबीर पर आज जबकि एक विमर्श शुरू हो गया है, उन्हें अंधश्रद्धावश ग्रहण करने के बजाय विवेक सम्मत धरातल पर देखना उचित और सही होगा। आइए पहले कबीर के स्वीकार वाले पहलू को देखें। दिलचस्प बात यह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर संबंधी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में कबीर के अस्वीकार को जितना उभार कर रेखांकित किया है, अपनी कबीर विषयक अधिकांश चर्चा कबीर के स्वीकार वाले पहलू की भी चर्चा करते हुए भी अस्वीकार की तरह उसे न तो उभारा ही है और न ही रेखांकित किया है। पृष्ठ संख्या 105। उन्होंने यह जरूर कहा है कि कबीर अपने समय में अस्वीकार का बहुत बड़ा साहस लेकर सामने आए थे, किंतु यह नहीं बताया कि कबीर में जितना अस्वीकार है उससे कहीं ज़्यादा स्वीकार। यह अस्वीकार, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, कबीर को अपने समय में बहुत आगे की शख्सियत बनाता है, जबकि उनका स्वीकार वाला पहलू उन्हें युगबद्ध बनाता है। अस्वीकार वाला पहलू कबीर को विशिष्टता प्रदान करता है, अपने समय में उनकी अलग पहचान बनाता है, जबकि जैसा हमने भी संकेत किया है, स्वीकार वाले पहलू के तहत कबीर अपने समय के वरन अपने बाद के सगुण भक्तों के साथ एक समान धरातल पर खड़े दिखाई देते हैं, सामान्य बन जाते हैं। जहां अस्वीकार वाले पहलू के तहत कबीर की आँच को झेल पाना और सह पाना हर आदमी के बूते की बात नहीं है, कम से कम व्यवस्था और उससे दरकार रखने वालों के लिए तो नितांत क्लेशदायक है। वहाँ उनका स्वीकार वाला पहलू व्यवस्था के लिए सहज रूप से ग्राह्य है। उस सतह पर कबीर को स्वीकार करने में उनकी परेशानी नहीं है, चले रहे विमर्श में भी। और पहले भी व्यवस्था कबीर के इस स्वीकार किए करने वाले पहलू को भी हाईलाइट करती है और कर रही है, और कोशिश करती रही है और कर रही है कि कबीर का अस्वीकार वाला पहलू जितना भी डाइल्यूटेड हो सके उतना भी डाइल्यूट किया जाए। कबीर महत्वपूर्ण बने तो स्वीकार वाले उस पहलू के तहत, न कि महत्वपूर्ण और समकालीन माने जाने वाले अपने अस्वीकार वाले पहलू के लिए। तर्क दिया जाता है कि कबीर को स्वीकार और अस्वीकार की बुनियाद पर बांट कर देखना सही नहीं है, उन्हें उनकी समग्रता में देखा परखा और विश्लेषित किया जाए, किंतु इस तर्क के पीछे भी कबीर को उनकी समग्रता, समग्र जटिलता और उनके अंतर्विरोधों के साथ देखे और विश्लेषित किए जाने पर उतना बल नहीं है जितना समग्रता में देखे जाने वाली दलील के पीछे उनकी स्वीकार वाली प्रतिमा को मान्यता और महत्व देने वाले दिलाने पर है। पैराग्राफ चेंज। बहरहाल देखें कि क्या है कबीर का वह स्वीकार वाला पहलू जो व्यवस्था को इतना प्रिय है। कबीर के इस स्वीकार में है उनका जाना पहचाना रहस्यवाद, ब्रह्म, जीवन मरण और माया का प्रपंच, विरहिणी आत्मा का परमात्मा के लिए जलना तड़पना, संयोग और वियोग की लुका छिपी। इस स्वीकार में है उनकी उलट बांसियाँ, गगन मंडल में गाय का ब्याना, मछलियों का आकाश में चढ़ना, कंबल का बरसना और पानी का भींगना। इस स्वीकार में है कबीर का अनहद गगन गुहा से रस का झरना और कबीर का उसमें भींगना और नहाना। इसमें उनका युग दर्शन, इंगला पिंगला के ताने बाने, अष्टदल कमल है। और पृष्ठ संख्या 106। सहस्रदल कमल है, ससुराल है, पीहर मायका है, दुल्हन बनी कबीर की आत्मा और भरतार राम है। इसमें भाग्य, नियति और जीवन की क्षण भंगुरता की बातें हैं, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म दोनों है, और इसमें कबीर की भक्ति भी है, उनका प्रेम दर्शन भी है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें कबीर की उस दृष्टि की प्रधानता है जो परंपरा से चले आ रहे धर्म और धर्मशास्त्रों, संपरंपरागत दार्शनिक उपक्रमों की देन और उनके अनुकूल है। इस स्वीकार का कुछ अंश तो कबीर का ग्रहण किया हुआ है, मसलन उपनिषदों के ब्रह्म की अवधारणा और तमाम कुछ उनके साथ कुछ परंपरा के प्रभाव में और कुछ संस्कारों के रूप में चला आया है। कबीर का यह वह पहलू है जिसके कई आयामों पर कबीर दुर्बोध भी लगते हैं, कठिन, जटिल और कहीं कहीं अव्याख्याय। व्यवस्था इस जटिलता और दुर्बलता को और भी गाढ़ा करते हुए कबीर की ऐसी बाणियों को उनकी मुख्य देन के रूप में प्रचारित करने का उद्योग भी करती रही है और कर रही है कि उनसे उन्हें अपने तई कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आती। वह चाहती है कि कबीर गुणवाणियों के एक पहुँचे हुए संत के रूप में पूजे जाएं और जानने समझने का उपक्रम करने पर भी वे आसानी से समझ में न आए, और यदि व्याख्याएं भी हो जाए तो उनकी ये वाणियाँ ऐसी हैं कि उनके कबीर का वही महत्व सामने आएगा जो व्यवस्था कबीर को देना चाहती है। पैराग्राफ चेंज। आखिर कबीर के रहस्यवाद, उनके अध्यात्म, उनके हठ योग और उनकी उलट बांसियाँ वे माधुर्य भाव की ही हो अथवा प्रपत्ति भाव की, उनकी भक्ति से व्यवस्था का क्या बढ़ने बिगड़ने वाला है? बिगड़ने वाला तो जरूर ही कुछ नहीं है, हाँ, पर बनने वाला जरूर है। वह उस सारे चले आते हुए को धर्म, दर्शन, परंपरा और संस्कृति के नाम पर आसानी से न केवल बनाए रख सकेगी, उसे मजबूत करते हुए आगे के समयों में ले जाने के अपने मंसूबे में भी कामयाब होंगी। कबीर के स्वीकार के पहलू में भी कुछ ऐसा है जो व्यवस्था पर उंगली उठाता है और उसकी अमानवीयता को बेनकाब करता है, परंतु व्यवस्था इससे परिचित है। वह पहले भी इस प्रकार के प्रयासों को झेल चुकी है और जान चुकी है कि इससे उसे तत्कालीन कुछ परेशानियां भले हों, अंततः उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस जरिए से यदि उस पर कुछ सवाल उठाए भी जाए तो जनमानस उनसे प्रभावित नहीं होता। अपने संस्कारों के तहत जो जनमानस पर सदियों से हावी होते चले आए हैं वह उनसे उभरे अर्थों को अपनी नियति मानकर स्वीकार करता चला आया है। मसलन इसी बात को लेकर कि संसार में जो कुछ भी है सब कुछ साईं का ही पैदा किया हुआ है, कोई छोटा बड़ा राजा प्रजा नहीं है, सब बराबर और एक हैं। जो जनमानस मनुष्य की मात्र की इस बराबरी को जानते समझते हुए भी समाज में उनकी गैर बराबरी या विषमता को भी ईश्वर की देन, भाग्य या कर्मों का फल मानता हुआ स्वीकार करता चला आया है, बावजूद इसके जरूरी है कि कबीर के स्वीकार वाले पहलू के इस निहितार्थों को बराबर उभारा जाए और व्यवस्था तथा उसके कर्णधारों की अमानवीयता का पर्दाफाश होता रहे।